संघीय मंत्री परिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भारत के संविधान की धारा 74 आर्टिकल 74 के अनुसार व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता तथा उसको परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति इसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस आर्टिकल 74 एज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अतः वास्तव में मंत्रिपरिषद जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका होती है जो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है। राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद की रचना फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संविधान की धारा 75 ब्रैकेट में 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 इन ब्रैकेट 1। परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तथा अन्य मंत्रियों की सूची प्रधानमंत्री तैयार करता है तथा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की इच्छा डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कुछ विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है जैसे कि 1 यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या 2 प्रधानमंत्री अकस्मात त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की अकस्मात मृत्यु हो जाए। उदाहरणतः 15 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसी प्रकार 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अकस्मात मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति ने श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 10 नवंबर 1990 को राष्ट्रपति द्वारा जनता दल एस के नेता श्री चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तथा 20 जून 1991 को कांग्रेस आई के नेता श्री पीवी नरसिंहा राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 16 मई 1996 को राष्ट्रपति द्वारा भाजपा के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, परंतु साथ ही राष्ट्रपति द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 31 मई 1996 तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्रकट करने के लिए भी कहा गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त न होता देखकर 28 मई 1996 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त मोर्चे के नेता श्री एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा श्री एचजी देवेगौड़ा को 12 जून 1996 तक लोकसभा में बहुमत के विश्वास की अभिव्यक्ति करने के लिए भी कहा गया था। 11 अप्रैल 1997 को संयुक्त मोर्चे के नए नेता श्री इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था जिन्हें कांग्रेस दल द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के परिणाम स्वरूप 28 नवंबर 1997 को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। पेज 159। फरवरी 1998 में हुए 12वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा भारतीय जनता दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 19 मार्च 1998 को मंत्रिपरिषद को पद पर सरकारी भेद गुप्त रखने की शपथ दिलाई गई थी जिनके द्वारा 28 मार्च 1998 को लोकसभा में विश्वास मत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया गया था। 13वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 11 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ एनडीए के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया जिनके नेतृत्व में 70 सदस्यीय मंत्रिपरिषद द्वारा 13 अक्टूबर 99 को शपथ ली गई थी। अप्रैल मई 2004 में करवाए गए 14वीं लोकसभा के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनावों से पहले बने गठजोड़ प्री पोल अलायंस द्वारा लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया था, जिसे चुनावों के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ यूपीए नाम दिया गया था। 18 मई 2004 को डॉ मनमोहन सिंह को कांग्रेस सदस्यीय दल और संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ यूपीए का नेता चुना गया था। इसके बाद 19 मई 2004 को राष्ट्रपति द्वारा डॉ मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिनके नेतृत्व में 22 मई 2004 को 68 सदस्यीय मिश्रित मंत्रिपरिषद द्वारा शपथ ली गई थी। 16वीं लोकसभा के चुनावों के बाद मंत्रिपरिषद का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 16th लोकसभा। अप्रैल मई 2014 के लोकसभा के चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा की 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया था। 20 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी को पहले भारतीय जनता पार्टी और बाद में राष्ट्रीय लोकतंत्र गठजोड़ एनडीए द्वारा संसदीय दल का नेता चुना गया था और इसके बाद उनके द्वारा राष्ट्रपति को मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति द्वारा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 46 सदस्यीय मिश्रित मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भवन के सामने खुले मैदान में 4000 के लगभग अतिथियों की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। श्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 24 कैबिनेट मंत्री, 10 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र विभागों के इंचार्ज थे और 12 अन्य राज्य मंत्री शामिल थे। यद्यपि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, परंतु उनके द्वारा राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ एनडीए में शामिल दलों को भी मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यद्यपि मौलिक संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था, परंतु दिसंबर 2003 में संविधान में किए गए 91 संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है, जो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद का आकार विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भिन्न भिन्न रहा है। उदाहरणतः वीपी सिंह मंत्रिपरिषद का आकार 38 था, पीवी नरसिंहा राव मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों की संख्या 57 थी, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों की संख्या 79 थी और डॉ मनमोहन सिंह मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों की संख्या 81 तक भी पहुंच गई थी। परंतु 26 मई 2014 को गठित श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 46 थी, जो 9 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किए जाने के बाद बढ़कर 67 हो गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को छोटा रखे जाने और उनके द्वारा छोटी सरकार और अधिक शासन, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास प्रकट किया गया है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतर 82 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। पेज 160। मंत्रियों में विभागों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। मंत्रियों के बीच विभागों के विभाजन का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देता है। प्रधानमंत्री विभागों का पुनः विभाजन भी कर सकता है तथा यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विभागों के विभाजन से सहमत नहीं तो उसको पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. उन सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो जो कि केंद्रीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए जरूरी है। 3. वह व्यक्ति संघीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य जरूर होना चाहिए तथा यदि नहीं है तो मंत्री बनने के 6 मास के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संविधान की धारा 75 ब्रैकेट में 2 आर्टिकल 75 इन ब्रैकेट 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक अपने पद पर रह सकते हैं। द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 75 इन ब्रैकेट 2। परंतु वास्तविकता यह है कि मंत्री प्रधानमंत्री की प्रसन्नता तक अपने पद पर रह सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी समय भी किसी मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, और यदि संबंधित मंत्री ऐसा नहीं करता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसे मंत्री को पद से अलग करने के लिए बोल सकता है। जहां तक मंत्रिपरिषद का संबंध है, संविधान की धारा 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के समक्ष उत्तरदायी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द हाउस ऑफ द पीपल आर्टिकल 75(3). अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा में प्राप्त बहुमत के विश्वास तक अपने पद पर रहती है, और विश्वास छिन जाने पर इसे पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। जैसे 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह मंत्रिपरिषद को, 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर मंत्रिपरिषद को, 28 मई 1996 को वाजपेयी मंत्रिपरिषद को, 11 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा मंत्रिपरिषद को और गुजराल मंत्रिपरिषद को कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया समर्थन वापस लिए जाने के परिणाम स्वरूप 28 नवंबर 1997 को केवल 7 मास पद में रहने के पश्चात त्यागपत्र देना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिपरिषद को 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण 13 मास पद में रहने के पश्चात त्यागपत्र देना पड़ा था। मंत्रियों के वेतन और अन्य भत्ते, सैलरी एंड अदर अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के मंत्रियों को यात्रा भत्ता, आवास के लिए मुफ्त निवास स्थान, मुफ्त डॉक्टरी सुविधाएं तथा अनेक व्यक्तिगत सुविधाएं दी जाती हैं। पद और गोपनीयता की शपथ, ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी। प्रत्येक मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद की शपथ, ओथ ऑफ द ऑफिस ग्रहण करते समय मंत्री संकल्प करते हैं कि वे अपने पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को संविधान के अनुसार पूरा करेंगे। गोपनीयता की शपथ, ओथ ऑफ सीक्रेसी ग्रहण करते समय मंत्री संकल्प करते हैं कि वे मंत्रिपरिषद और अपने पद से संबंधित बातों को बाहर प्रकट नहीं करेंगे।